संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। पांचवी गाथा आरंभ करनी है जो इस प्रकार है, तम एयत्त बिहत्तम दाये हम अपनोस विविहीन यदि दायेज प्रमाणम चुकेज छलम न घेतव्यम। उस एकत्र भक्त भगवान आत्मा को मैं अपने वैभव से समझाऊंगा बताऊंगा, यदि बात बता सका और आपकी समझ में आ जाए तो उसे तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना, और कहीं भाषादिक में कहीं चूक रह जाए तो उसका छल ग्रहण करके गलत अर्थ प्रस्तुत मत करना। इस गाथा में पहला ही बात कहा है कि मैं उस आत्मा को बताऊंगा। क्या नाम दिया उसने उनको? अपने कहते ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, परम परिणाम के भाव, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कितने कितने नाम दिए हैं। और गुरुदेव ने तो उसने सैकड़ों नाम त्रिकालीदेव भगवान आत्मा के इसी समय साल में से निकाले थे। लेकिन कुन्नकुंडाचार्य देव अपने प्रतिज्ञा वाक्य में, ये उनका प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं क्या तुम्हें समझाने जा रहा हूँ इस समय साल में, बीच में कोई बात यहाँ वहां भी थोड़ी आएगी, पुण्य पाप किया जाए और आएगी, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें वो बात समझाने जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ये समझाऊंगा पुण्य पाप की बात में भी कि जैसा पाप आत्मा नहीं है ऐसा पुण्य भी आत्मा नहीं है। बस क्या? तो वो कहते हैं मैं एकत्व विभक्त, उन्होंने उसका नाम दिया, तो मैं एकत्व विभक्त आत्मा को तुम्हें समझाऊंगा। देखो जिस आत्मा को उन्होंने समझाने की प्रतिज्ञा की है उसका नाम उन्होंने रखा एकत्व विभक्त आत्मा, विशेषण दिया, उपाधि दी उन्होंने उसके लिए। अमर चंद्राचार्य ने इसकी टीका लिखी और उस टीका में जब सबसे अंतिम छंद लिखा तो उसमें अपना नाम, अपने नाम के सामने कौन सा विशेषण लगाया, कौन सी उपाधि लगाई, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र सूर्य, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य ने कहा इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। उनने अपना पर्याय की तरफ से नाम रखा स्वरूप गुप्त, और द्रव्य की तरफ से नाम रखा एकत्व विभक्त, कि मैं अपने स्वरूप में लीन। बस गुप्त का अर्थ है कोई मैं हूं ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, इसी का ध्यान, बस वो स्वरूप गुप्त हो गया। स्वरूप में गुप्त अमृतचंद्र सूरी का इसमें कोई काम नहीं है। क्या मतलब है? अभी तुमचंद जी साहब ने बताया ना कि छठवा गुणस्थान कब होता है, कि संजुलन कषाय का उदय जब तीव्र उदय होता है, जब मंद उदय होता है तो सातवां गुणस्थान होता है, है ना? तो कहते हैं सातवें गुणस्थान वाले अमृतचंद का ये काम नहीं है। मैंने सातवें गुणस्थान की भूमिका में मैंने ये नहीं लिखी है, क्या जब मैं छठवें गुणस्थान की भूमिका में आया तब लिखी है, यदि निमित्त से भी कहो तो। क्या निमित्त से भी तुम मेरा नाम इसमें जोड़ना चाहो तो वो जब स्वरूप में गुप्त नहीं था तब की बात है। बहुत ही मार्मिक बिंदु है ये, दादा ने अपनी किताब में बहुत अच्छा खोला है उसे, कि हमें सातवें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग यदि भाई और छठवें में शुभोपयोग, अब हमने शुभोपयोग के तो लिए बहुत दंडे मारे हैं, बहुत खाए भी हैं, क्यों यदि भाई शुभ भाव को बालों को धन्यवाद दे रहे थे तो तुम चंद जी मुस्कुरा रहे थे ने? लेकिन वो जो स्वभाव वाले आचार्य हैं वो अकेले स्वभाव वाले नहीं हैं, तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके उस समय विद्यमान है। तो जो द्रिविलिंगी 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 कह रहे, द्रिविलिंगी तो भैया तेरहवें चौदहवें गुणस्थान वाले भी होते हैं। द्रिविलिंग का अर्थ होता है नग्न दिगंबर दशा, तो नग्न दिगंबर दशा तो उनके होती ही है, भले ही वो 28 गुण उनके स्वभाव होते हो चाहे नहीं होते हो, तो भावलिंगियों के द्रिविलिंग तो होता ही है। जो भावलिंग नहीं है और द्रिविलिंग है, निंदा तो उनकी की जाती है, खासकर पहले गुणस्थान वाले द्रिविलिंग मुनियों की। देश तो रखे हैं छठवें सातवें के ऊपर वाला, पर हैं बादशाही गुणस्थान में, उन द्रिविलिंगियों की निंदा की जाती है। सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में एक पंक्ति आती है, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई और द्रव्य लिंग बिन शिव पद जाई, यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कथन सोई। द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं जाएगा लिखा, और भाव लिंग के बिना कर्म का नाश नहीं होगा, जयमाला में लिखा। इसके साथ भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है कि हमारा बाबू भाई का मिलन सबसे पहले सन 58 में सोनगढ़ में हुआ था। हम बगल बगल में ही ठहरे थे, इस श्राप का सुन था ना, तो उसके हॉल में बाबू भाई अपनी पार्टी के साथ ठहरे थे, बगल के कमरे में हम ठहरे थे। फिर बाद में उसी साल वे इंदौर परिसर में आए, और इंदौर के बाद गुना आए, और गुना के बाद हमारे तुम्हें गुना में सिद्ध तक विधान करा रहा था, और जब मैं सिद्ध विधान करा रहा था तो मैं जयमाला का अर्थ मेरा बहुत प्रसिद्ध था, मेरे लिए उसी के लिए लोग बुलाया करते थे, जयमाला का अर्थ सुनना है आपके मुख से। अब तो जतीश भाई भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो मुझे छुट्टी मिल गई है उससे। तो उसमें बाबू भाई जब स्टेशन से पधारे अपने मतलब सब लोगों के साथ, तब मैं मंदिर में बैठे बैठे इन्हीं पंक्तियों का अर्थ कर रहा था, इसलिए मुझे इसके साथ जुड़ गया वो बहुत था। तो बाबू भाई आए तो आते ही मैं गद्दी पे से उठ गया, मैंने कहा संभालो और आप बोलो, आप पढ़ो। हिंदी बोलने का बहुत कहानी, आप करो आप करो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप पधारे हैं तो आप करो, मैं तो करता ही हूं, मैं करूंगा। तो मैंने उन्हें दे दी किताब, अब वो पंक्तियां उनने पढ़ी तो उनकी समझ में क्या लिखा है, बाल लिंग बिन कर्म छपाई, द्रिविलिंग बिन शिवपद, भाव लिंग के बिना कर्म खप जाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि देखो इसका अर्थ तो पंडित जी ही करेंगे, और मैं तो अपनी बात कहता हूं जो कुछ करना है। तो उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, बहुत लोकप्रिय व्याख्यान उनका होता था, और आधा घंटा बोले, फिर बाद में मेरे को दे दिया कि मैं इसका अर्थ करूं। तो उतनी ही पंक्ति पढ़ो तो उल्टा अर्थ लगता है, तो लगता कि नहीं लगता, लेकिन वहां ऐसी 4-5 पंक्तियां हैं, अकेली एक दो नहीं है जिनमें ये लिखा है, जैसे कि लंगड़ा आदमी पहाड़ पे चढ़ जाए, फलाना आदमी गूंगा बोलने लग जाए, जो मतलब की पंक्तियां मुझे याद है, वे पंक्तियां मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका अर्थ वही है। गुर गुंग गान आरंभ स्वर से, ये ऐसी तो ये ऐसी पंक्तियां हैं, लेकिन उसका अर्थ ये 5 पंक्तियों का अर्थ ये है कि जैसे ये 5 काम असंभव हैं, उन 5 कामों में एक ये भी गिनाया कि भाव लिंग बिन कर्मों का खपना और द्रव्य लिंग का बिना मोक्ष जाना, क्यों अयोग कारज है सोई, उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे गुणों का कथन उतना ही अयोग्य अयोग्य कार्य मैंने मेरे बस की बात नहीं है, उतना ही असंभव है। तो बाबू भाई इतने प्रभावित हुए जब मैंने वो अर्थ बताया, तो उन्होंने मुझे खड़े होकर के कहा हमारे गुजरात का हमें आमंत्रण देता हूं, और आओ हमारे आइए, हम एक ही गांव में आपके साथ चलेंगे और हम आपको दें। इन पंक्तियों के साथ वो मेरा विकल्प जुड़ गया, तो जब भी बात आती है इसकी तो मुझे तो मेरे कहने का मतलब है द्रव्यलिंग सिंह शब्द इतना निंद नहीं है। हम समझ में आए ना, वो तो जब भावलिंग के बिना हो, और द्रव्यलिंग भी कई तरह के होते हैं, पहले गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, और छठवें गुणस्थान से लेकर के चौदहवें गुणस्थान तक वाले। हम सभी को एक वैसे भी तोल देते हैं, और द्रव्यलिंगी शब्द सुनते ही मुंह पे ऐसा भाव आ जाता है कि जैसे कि बहुत कड़वाहट आ गई हो गई। तो यहां तो वो ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अमृतचंद ने जो लिखी टीका, वो लिखी तो तुमने संजीवन कसाई के तीव्रोदय में, लेकिन वो तीन कसाई के अभाव रूप शुभ परिणति उस समय उनके विद्यमान थी। अशुभ भाव में आ जाने से मुनिपना खंडित नहीं हो जाता, मुनिपना खंडित तो वो शुद्ध परिणति जब होगी तो खंडित होगा। तीन कसाई के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके विद्यमान थी, तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा, स्वरूप गुप्त। और वो क्या कहते हैं कि जब मैं आत्मा में लीन था तब मैंने नहीं लिखी थी। तब सदरीय मानती है कि उसने कब लिखी होगी, क्यों है? जब मैं तीव्र राग की आग में जल रहा था, मतलब संतुलन कसाय वाली तीव्र राग, जो कसाय होगी वही तो तीव्र मंद होगी, अब तीन तो है ही नहीं, उसमें तीव्रता मंदता का क्या सवाल है? क्यों जो जो उनके जो कसाय का भंडार उनके पास है तो उसी में तो तीव्रता मंदता गिनी जाएगी ना। अरे अकेली टीका लिखना नहीं, ये प्रवचन वगैरह ये सब नहीं, 28 मूल गुणों का कारण उस तीव्र कसाय के कारण होता है। तीव्र राग के बिना ये इतना एक शास्त्र लिखने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि सारा विषय कसाय छोड़ना पड़ता है। फिर से पांव तक का पसीना एक करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी लिखा जाता है, कितना अध्ययन, कितना मनन, कितना आगे पीछे से, क्योंकि वो लिख के जब बाद में आएगा तो सामने उसमें गलतियां निकालने के लिए हजारों लोग बैठे हैं। इसलिए जो आचार्य हुए ना, क्या नाम, धर्म शर्माध्याय के कथा, क्या नाम है, धर्म शर्माध्याय जिनने लिखा, धर्म शर्माध्याय हरिश्चंद्र, हाँ आचार्य हरिश्चंद्र नाम है उनका, उनने धर्म शर्माध्याय नाम का एक महाकाव्य लिखा है, वो धर्मनाथ भगवान का उसमें जीवन चरित्र का वर्णन है। तो उसमें उन्होंने मंगलाचरण में एक श्लोक लिखा, पढ़ा तुमने कभी क्या नहीं, अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहाय परिशीलनेन, कह रहे छरंती चावा है, मैं अर्थ बताता हूं, बीच बीच में मुझे छंद भी याद आ जाएगा पूरा, आधा तो सुनो अर्थ, अहो खलस्यापि महोपयोगा, खल माने उसे बोलते हैं कि जिस तिल्ली तिल्ली होती है मूंगफली, उसमें से तेल निकाल दो तो बाकी की बचती है उसे क्या बोलते हैं, अब तो सुनिए, खली कह रहे खल, अहो खलस्यापि महोपयोगा, खल खल का महान उपयोग है, बहुत बड़ा उपयोग है खली को, ये क्या उपयोग है, स्नेह द्रोहायत परिशीलने, के वो स्नेह द्रोही तो है, वो स्नेहियों से भी द्रोह करने वाली तो है, स्नेह माने तेल, और वो निकल गया है, जिसका तेल निकल गया है ऐसी खल स्नेह द्रोही हो गई ना, स्नेह द्रोहायत परिशीलने, अब उसका परिशीलन किया, सेवा की, ये किया, अब क्या करो, अब उसका सेवन करो तुम, उस जिसमें से तेल निकल गया है, तो तेल निकलने सहित वो जो मूंगफली और तिली कितनी बढ़िया होगी, क्यों जो तेल निकल गया है ऐसी वो खल यदि गायों को खिला दें, क्या आकंठ मास पूरित पात्र में तीसरी पंक्ति याद आ गई कि वो जो बर्तन है ना अपना जिसमें दुहते हैं उसे, वो इतना दूध देती है तो उसका गला तक भर जाता है। किसका? बाल्टी का गला होता है यार, पुराने जमाने में वो होता था हंडा मंडा जिसमें दूध दुहा जाता था, बाल्टी के जमाने में आ गया थी आता था, गला होता था ना उसका, हंडे का गला घड़े का गला, तो आकंठ मां पूरित गले तक दूध भर जाए, इतना दूध देती है उस खल के खिलाओ तो। इसलिए खल का बहुत बड़ा उपयोग है। आकंठ मां पूरित पात्र में तत् सुगंधी गावा ऐसा है। अब धीरे धीरे अंत तक चौथी पंक्ति भी याद आ जाएगी। भैया मैंने उसमें 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, अब 72 का हो गया हूं, 60 साल पहले, उसके बाद वो किताब खोल के नहीं देखी, तो जितना रहेगा उतना ही तो रहेगा। तो इस साहित्य की किताबें याद थोड़ी की जाती हैं, कि तो याद रह जाती हैं, हम याद थोड़ी करना पड़ते हैं इनके। तो कहते हैं एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ, दो अर्थ है उसके, अहो खलस्यापि महोपयोगा, दुष्टों का भी बहुत बड़ा उपयोग है। खलमन दुष्ट होते क्या? नहीं, अहो खलस्यापि महोपयोगा, स्नेह द्रोहायत पलिशील ने, उनकी सेवा भी करो, कितनी भी अनुकूलता दिखाओ तो अभी भी स्नेह से द्रोह करते हैं। क्या स्नेह वात्सल्य भाव उनमें नहीं होता? स्नेह द्रोहा खला, स्नेह के द्रोही खलों का भी बहुत बड़ा उपयोग है। क्या कहते हैं कि मेरी गावा माने वहां तो गाय थी, और यहां गावा माने है साहित्य, सब साहित्य दिनवाणी, गो माने होता है ना, दिनवाणी होता है ना, गो शब्द के 11 अर्थ होते हैं, एक गाय होता है, एक दिनवाणी भी होता है, बोलते ना अपन दिव्य ध्वनि को गो ध्वनि बोलते हैं, गोचर भूमि के बोलते हैं एक शब्द आता है, हैं? तो गो माने दिव्य ध्वनि अथवा सत साहित्य। तो वो क्या करते हैं कि उसमें जितने दोष होते हैं उन्हें निकाल निकाल के और अपने में आकंठ मां पूरे अपने में भर लेते हैं, और जैसे वो और ज्यादा दूध निकाला तो उछलने लगता है ना, ऐसे भी दोष उसके मुंह में से उछलने लगते हैं, और उछलने से वो हमारे पास आ जाते हैं, और हमारे पास आने से उस साहित्य में से हम दोषों का करेक्शन कर देते हैं, तो हमारा साहित्य निर्मल हो जाता है। इसलिए उनका भी बहुत बड़ा उपयोग है। धर्म शर्माबुदय नामक किताब में महाकवि हरिश्चंद्र ने ये लिखा था जो मैंने 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। तो भैया लिखने के पहले 100 दफे सोचना पड़ता है, बोलने के पहले इतना सोचना नहीं पड़ता, सोच लेते हैं तो अभी बिना सोचे तो कोई बोल ही नहीं सकता, ख्याल में आई ना। लेकिन लिखने में जो जिम्मेवारी है, इसलिए तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भैया कोई गलती तुम्हें दिखे तो हमें बताओ, हम गारंटी से उसे गलती होगी तो दूर जग करेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है? मैं एकत्र भक्त आत्मा को बताऊंगा, और कौन बताएगा? स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र नहीं, स्वरूप गुप्त कुंद कुंद नहीं, तो तीव्र के सार वाले कुंद कुंद क्या बताएंगे बोलो? एकत्र भक्त आत्मा को बताएंगे ना। अब जरा पीछे देखते हम कि दूसरी गाथा से फिर जरा देखो, हेटेंगे घबराना नहीं, मैं अभी उनका अर्थ नहीं करूंगा। दूसरी गाथा में ये कहा था कि इस समय दो प्रकार का है, स्वसमय और परसमय, और तीसरी गाथा में कह दिया कि इसमें कोई दम नहीं है, समय समय स्वसमय परसमय काय के हैं, आत्मा तो एक ही है, इसमें स्वसमय कुछ नहीं, समय है, समय है एकत्व। तो उन्होंने एकत्व की स्थापना की, वो दुविध बना की, उन्होंने खंडन किया। तीसरी गाथा में कहा एकत्व उपदर्शते, देखा ना, अब मैं तुम्हें एकत्व बताऊं, प्रतितत बाध्यते, माने वो दो बातें नहीं है, मैं उसमें बाधा देता हूं, स्वसमय और परसमय के भेद में बाधा उपस्थाता हूं। फिर तीसरी गाथा के हेडिंग में क्या लिखा? अति अति असलोत्ते चौथी गाथा में तीसरी तो हो गया ना, चौथी गाथा में ये बताया कि वो जो एकत्व भक्त मैं तुम्हें बताने वाला हूं एकत्व वो असुलभ है, सहज सुलभ नहीं है इस जगत में, क्योंकि राग द्वेष की कथा तो जगत में है। आज ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कैसी बात करते हो, इतने लोग सुनता है, इतने बत्ता है, ये आत्मा की बात चल रही है सारे देश में, क्यों क्यों से कहते जी? तब अपन पहली दफे 58 में गए थे गुरुदेव के पास, तब वहां 200 आदमी थे, वो छोटा स्वाध्याय भवन है ना, उसमें उसी में गुरुदेव प्रश्न करते थे, वो सब बैठते थे, और आज यहां 2000 बैठे। जतीश भाई को चिंता करनी पड़ रही है, तो 200 आदमी की किसी को चिंता नहीं करनी पड़ती, जब 2000 हो जाएंगे घर का परिवार इतना बढ़ जाएगा तो चिंता करनी ही पड़ेगी ना। तो क्या कहते हैं कि इतना एकत्र जो है वो इतना दुर्लभ है इस जमाने में, तो हमें नहीं लगता। भैया तुम 6 अरब के हिसाब से विचार करो, दुनिया में 6 अरब आदमी हैं, तो कितनों को कितना सुलभ है, क्या कितनों को कितना सुलभ है भजन भाई? अरे ये महादुर्लभ है। तो असुलभ तेन विभाव्यते, वो असुलभ है, सुलभ नहीं है। अब वो कहते हैं पांचवी गाथा में उसे हम सुलभ कर रहे हैं, वो असुलभ है तद एतम उपदर्शते, इसलिए हम उसको बता रहे हैं। तो जगत में जगह जगह नहीं मिलेगा, वो हमारी दुकान पर ही मिलेगा, समझ में आया ना, वो सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। समयसार समझना होगा तो हमारी दुकान में ही आना, हमारी माने अम्बेडकर जी कह रहे हैं, क्या उनकी शरण में आना पड़ेगा, हमारे साथ उत्तमचंद जी की दुकान पर भी जा सकते हो, नहीं तो दोनों की एक ही दुकान है ना, अलग अलग है तो एक ही है ना, एजेंसी है तो क्या देखो क्या कह रहे हैं, मैं दो एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां तो बात थी एकत्व की अकेली, और यहां एकत्व विभक्त आ गया, विभक्त और जुड़ गया, देखो अंतर देखो गाथा में, वहां तम एक वहां एकत्व आत्मा एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लेख में, तो एकत्व निश्चय एकत्व की बात थी, विभक्त की नहीं थी। और इस पांचवी गाथा में तम एकत्व विभक्तम, नहीं उस एकत्व विभक्त को, तो तीसरी गाथा में काय की बात थी, और चौथी में क्या जुड़ गई, विभक्त जुड़ गया, लेकिन दूर जुड़ा जरा पर देखो, सुख परिणाम भूजो शब्दा से काम भोग बंद था, ए तुम असुलम हो नंबर ही न सुर हो विभक्त से, ये विभक्त से आ गया ना, तो एकत्व विभक्त ये अलग अलग आया, और पांचवी गाथा में इकट्ठा आ गया तम ए यत्व विभक्तम, अंतर ख्याल में आया कि नहीं? पहले एकत्व ये अकेली बात थी, एकत्व मुश्किल है भगवान आत्मा का, फिर दूसरी गाथा में कहा एकत्व भक्त आत्मा भक्त कठिन है, और चौथी बात पांचवी गाथा में कहते हैं अब तुम हम एकत्व भक्त आत्मा समझा, और ये एकत्व भक्त क्या अपने में अखंडता उसका नाम एकत्व, और पर से जुदाई उसका नाम विभक्त। देखो देश को खतरा दो तरह से होता है, एक अंदर से और एक बाहर से। मैंने नए चक्र की किताब में 6 पेज में ये उदाहरण देके बहुत बात स्पष्ट की है, निश्चय व्यवहार के प्रकरण में 6 पेज है, देश का उदाहरण से द्रव्य को, देश के उदाहरण से द्रव्य को स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान देश है तो ये तो पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, तो बिल्कुल बॉर्डर चारों तरफ जिन जिन से लग रहा है उनसे ज्यादा खतरा है ना, और एक अंदर से फूटना पड़ जाए उससे खतरा है। जैसे कहते हमको तो काश्मीर अलग चाहिए, वो फलाने को ये चाहिए अलग चाहिए, जो जो भी आते हैं ना मांग उठती है, तो इस एक इनसे खतरा है। तो एक एकता ना टूट जाए देश की, और पर की जो हमारी सीमा रेखाएं हैं उनसे जुदाई दृढ़ता से कायम रहे, वो सीमा रेखा सुनिश्चित हो, वो गोलमाल नहीं रहे किसी से झगड़ा खड़ा हो जाए, तो विभक्त माने वो बाहर की सीमा रेखा। एकत्व से ज्यादा विभक्त का खतरा है, कैसा खतरा है
कि भाई शरीर आत्मा से बाहर था हमने घुसा दिया अंदर, राग आत्मा से बाहर था हमने घुसा दिया अंदर, ये विभक्ति की जो बाहर की सीमा रेखा थी वो टूट गई। गुरुदेव जी के प्रवचन में सुबर प्रकाशक की तो बहुत बात थी, उसमें लंबा नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन एक बात तो उनका ये भी था कि मैं गायक को जानता हूं, ये भी विभाग है सर। आज यार आज कह रहा हूं मैं, मुझे इतना आनंद आया वो बात सुनकर, क्योंकि मैं एक बात कहा करता था कि जब ये तर्क आता था मेरे सामने कि आप पर तो भाषित होता है और आत्मा अपने को जानता है ना, तो मैं क्यों भैया, क्योंकि वो तो झलकता है पर्याय में, झलकता है फिर हम पर्याय को जानते हैं ऐसा बोलते थे। तो मैं ये कहता था कि आत्मा को जानने की भी वही प्रक्रिया है, वो भी त्रिकालिक रूप भी पर्याय में ही झलकता। ये बात मैंने हजारों दफे कहा होगा और मेरे कष्टों में भी होगा, मेरी लिखे लिखनी में भी होगा। तो ये इस बात को तो भैया फिर यदि तुम पर को नहीं जानेगा तो फिर स्व को भी नहीं जानेगा। तो आप जो पर को जानने को व्यवहार कहा तो स्व के जानने को भी, गायक को जानने को व्यवहार कहा, क्योंकि भेद है। तो अब वो अपेक्षाएं अलग अलग है ना, पर को जानने की मैं अपेक्षा अलग है, तन्मय होकर नहीं जानता इसलिए है, तो गायक को तो तन्मय होकर जानता है, तो अकेले भेद की अपेक्षा है। तो व्यवहार अनेक अपेक्षाओं से कहा जाता है, तो उतनी अपेक्षा पूर्ता उस बात को समझना। और गुरुदेव ने यह भी कहा सुपर प्रकाशक, सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद भले ही व्यवहार से होगा, लेकिन ये अनंत गुण तो आत्मा में निश्चय से है ना, अनंत शक्तियां तो निश्चय से है ना, तो सुपर प्रकाशक तो शक्ति भी निश्चय से है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, जो गुरुदेव ने दूसरी बात कही थी कि जब पर को जानता ही नहीं है उन तक, तो कर्ता की बात कहां से आ गई। तो वो पर को जानने का हुआ नहीं प्रतिपादन कर रहे, वे तो कर्तृत्व के निषेध के लिए जानने का उदाहरण दिए। क्या अकर्तृत्व भी एक शक्ति है ना, और त्यागोपादान सुन्नत भी एक शक्ति है। तूने आज तक पर का ग्रहण किया ही नहीं, त्याग किया ही नहीं, तो तूने कुछ किया ही नहीं, कैसा भी क्या बात करते हो, हमें तो इतनी मेहनत कर करके मर गए और तुम हमारे लिए सब बिल्कुल साफ करते हो। तो गुरुदेव फरमाते हैं तो तेरी सीमा विकल्प तक है, विकल्प कहा परम करता विकल्प कर्म केवलम। ये विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है, बस इतनी सी बात है। और आत्मा का नाम वहां विकल्प के करने की वजह से क्या रखा, विकल्पक, समझे ना। कुंभम करोति इति कुंभकारा, तो कुंभक भी कह सकते हैं ना उसे, कुंभक ऐसे विकल्पक, आज समझ में आ गया ना। तो विकल्प कहा परम करता, विकल्प कहा परम करता विकल्प कर्म केवलम। और मैं जाप चित क्या बोलो, हाँ सुनो, इसलिए सविकल्प व्यक्ति के कभी कर्ता कर्म का नाश नहीं होगा, न जाप चित, समझे ना, सविकल्प से नश्यति उसके कभी नाश नहीं होगा। तो तेरी सीमा तो विकल्प तक है, तो किसी अपेक्षा तो विकल्प का कर्ता हो सकता, त्रिकाली ध्रुव तो नहीं, अभी वो अपेक्षाएं नहीं। अभी जो गाथा एक कलश है ना कि विकल्प कहा परम करता विकल्प कर्म के, इसका अर्थ करो कि विकल्प तेरा कर्म है और तू उसका करता है। अब विकल्प क्या हुआ सुनिए, ये विकल्प हुआ कि मैं आपका बुरा करूं या आपका भला करूं, कोई विकल्प कुछ भी लेना। तो वो कहते हैं वो विकल्प है वो अकिंचित कर है कि किंचित कर है, मेरा तर्क समझ में आया ना आपकी। फिर आप सुन रहा था, गुजर का सुन रहा था, तो मैं जरा सोचता रहता हूं, तो मेरे को विकल्प आया, स्पष्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। वो जो विकल्प है, विकल्प का करता आत्मा है ना, समझे ना, विकल्प कर्म पे विलंब। तो मैं बोलता हूं वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक है, निरर्थक है ना, क्यों सुनो, ये आचार्य की बात बता रहा हूं, बिल्कुल मूल आचार्य की बात लिखी है वो बता रहा हूं, चिंता नहीं करो। वो कहते हैं वो निरर्थक भी है और सार्थक भी है, अनेकांत है जैन धर्म में। पर आज दोनों अपेक्षाएं इतनी गहरी हैं कि आपको चित्त से इंकार ही नहीं कर सकते उन्हें, तो निरर्थक क्यों है कि जैसा विकल्प तूने किया है उसके अनुसार जगत में काम होने ही वाला नहीं है।
ऐसा नहीं कभी हो जाएगा और कभी नहीं होगा। एक तरह के भी दिया जाता पुण्य के उदय वालों का, कभी विकल्प के अनुसार कार्य हो जाता है लेकिन अनंत बार तो होता ही नहीं है। क्यों? तो कभी हो जाता, कभी एक कभी, अरे वो हुआ है, वो तेरे कारण हुआ ही नहीं, तेरे विकल्प के कारण, वो तो ऐसा ही होना था, वो तेरा भाव ऐसा हो गया। क्या नितिन? तो विकल्प पूर्णता निरर्थक है, सर्वथा निरर्थक है। किस अर्थ में? कि जो ऐसा विकल्प किया गया है वैसा होने ही वाला नहीं, अब वैसा हो जाए तो, बोलो शांतिलाल जी, तो भी इसके विकल्प के कारण वो ऐसा नहीं। समझे? फिर कहता हूं, किसी के मां बहन के गर्भ रह गया तो विकल्प बच्चा हो ऐसा विकल्प हुआ, समझ नहीं आती। तो जिसके बच्चा नहीं हो गया, बच्ची हुई, वो तो विकल्प के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन जिसके बच्चा ही हो गया तो उसका तो विकल्प के हिसाब से होगा, तो उसका तो वो विकल्प कर्तव्य सही हो गया ना, कंचन कर हो गया कि नहीं। तो कहते हैं वो बच्चा उसके विकल्प के कारण नहीं हुआ, वो उसका कारण उसमें विद्यमान है, तो विकल्प तो सर्वथा निरर्थक ही है। गुरुदेव ये बता रहे थे, ध्यान से सुनो तो, कि वो पर मैं कुछ भी करने का विकल्प तेरा सर्वथा निरर्थक है। तो लोग, मेरा इतने दिनों का सपना था और तेरा आज मेरा सपना पूरा हो रहा है, मुख जाने का सपना क्यों नहीं देखते भैया? अरे सपना ही देखना है तो कंजूसी का क्यों देखना है? क्यों जमीन पर ही सोना है तो पैर पसार के क्यों नहीं सोते हो? वहां क्यों सुकड़ाई कुकड़ी करते हो? क्यों? यदि कल्पना है कहीं लड्डू खाना है तो भरपेट खाओ, और फीके क्यों? बढ़िया से बढ़िया मीठे से मीठे खाओ ना, क्योंकि उस कल्पना के हिसाब से होना तो कुछ भी नहीं, सपना सपना कुछ भी होना साहब, वो तो एक सोने में सपना आता है और एक जागते हुए सपना देखा था मैंने। क्यों? ये पागलों के काम है, मेरी दृष्टि नहीं, आचार्यों की दृष्टि में। आचार्य कहते तेरे विकल्प के अनुसार जगत में कुछ नहीं होता है, कुछ होने वाला नहीं है, और यदि कदाचित वैसा हो ही गया तो वो तेरे विकल्प के कारण नहीं होगा। तो अभी इसलिए वहां इतनी भी गुंजाइश मत रख, उस तरफ तू अपने इतनी भी गुंजाइश मत रख। अब ये तो हो गया निरर्थक, पक्की है ना, इसमें तो कोई अस्वीकार तो नहीं है। अब देखो साफ करके आचार्य कहते हैं, तो जो तूने वो विकल्प किया है परमे करने का, उससे तुझे गारंटी से कर्म बंद होगा, तो सार्थक है कि निरर्थक? हम क्या अच्छा होगा उसको सार्थक मानते हैं। अरे उसका तो होगा ना कार्य, वो विकल्प का निरर्थक गया, तूने विकल्प किया हो तुझे कर्म का बंद होगा तो सार्थक हो गया ना, तो तेरे कर्म के बंद में वो सार्थक है। जहां तू जिसके बारे में विकल्प किया वहां सर्वथा निरर्थक है और यहां सर्वथा सार्थक है, और दोनों अपेक्षाएं कितनी मजबूत है। सोचो गंभीरता से, ये तत्व है जिनमानी, ये गाथाएं, ये अमरचंद की टीका, ये ऐसे महामंत्र हैं जो कर्तृत्व के अहंकार के जहर को उतारने वाले हैं। और मेरा एक बहुत स्पष्ट एक सोचना रहता है, जब पाठ कराते हैं ना, ये 25 गाथाओं का कराए तो उसे नहीं काटना। आप लोगों को विकल्प आता होगा कि क्यों ऐसा कहते हैं, ये तो हम बोलेंगे, वो तो उसमें हमारी बात भी कुछ मिली हुई होगी, ये तो प्योर कुंद कुंद की बात है। सतीश भाई, ये तो आचार्य की गाथा है, उसमें जो बात कही जा रही है वो तो कुंद कुंद ने कही है, तो वो बात उसको कैसे काटे हम? उस तो तुम लोगों को पहुंचने ही दो, वो तो तुम्हारे महाजहर उतारने वाले मंत्र हैं, एक एक गाथा महाजहर उतारने वाले मंत्र हैं। आप जितने भी विकल्प जाल में उलझे हों, कथा चक्र में उलझ गए हों, चित्त अत्यंत आकुल हो गया हो, तो क्या करना कि जिनवाणी का गहराई से स्वाध्याय करना, पाठ करना, मूल गाथाओं का पाठ पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? तो उसमें आचार्यों की मूल गाथा की बात आ रही है, गारंटी से आपका जहर उतरेगा।
ये गारुड़ी मंत्र गुरुदेव का शब्द है, ये गारुड़ी मंत्र है। गारुड़ी मंत्र जानते कैसे बोलते हैं? ऐसा है, सांप का गरुड़ जो है वो सांप का विरोधी है, और गरुड़ दिखाई दे जाए, गरुड़ की आवाज आए तो सांप की नसें ढीली हो जाती है। तो इसलिए जिससे सांप का जहर उतरता है उस मंत्र का नाम पड़ गया गारुड़ी मंत्र। तो वो ये कहते हैं कि तेरे विकल्प जाल का, चाहे वो शुभभाव रूप हो चाहे अशुभभाव रूप हो, चाहे पर के कर्तृत्व रूप हो चाहे अपने में फेरफार के कर्तृत्व रूप हो, ख्याल में आया ना, वो सारे विकल्प वहां जहर हैं, और ये गारुड़ी मंत्र उस जहर को उतारने वाले हैं। इसलिए एक ईसा जिनवाणी ही परम शरण है। सोनम जी ने तो बहुत देखो तब तब विचार की महिमा लिखा कि तब विचार में अध्ययन के बिना तो विचार कहां से करेगा, अध्ययन मनन चिंतन सब आ गया कि नहीं आ गया। तो ये गारुड़ी महामंत्र है, हम घंटा दो घंटा इसमें अपने उपयोग को लगाएं, और उसके पहले का विकल्प जाल, मैं उसे कसाय शब्द नहीं कहना चाहता हूं जानबूझ करके, है तो वो कसाय का ही भेद मंत्री रूप है ना, वो तो विकल्प जाल ना टूटे। चल एक बच्चों को पुराने जमाने में बहुत जुकाम हो जाता था, दवाई मवाई तो होती नहीं थी, नाक बहती रहती तो करते रहते थे। तो हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते थे बेटा छनक दो ना इसे, भगवान और देगा। इसको संभाल के क्यों रखा क्या? नहीं पाई क्या कि भगवान और देगा, तुम काय पे इसको संभाल के रखते हो? तो मैं कहता हूं कि ये विकल्प खड़ा हुआ है, इसको तुम दमन कर दो ना, भगवान और देगा। अभी तुम इस भूमिका के तार नहीं हो गए हो कि तुम निर्विकल्प हो जाओ। क्यों? जितने पुराने विकल्पों को तुम क्षय कर सकते हो करो, और वो एक जिनवाणी के स्वाध्याय के बिना कोई उपाय नहीं है। और जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए आचार्य उमा स्वामी ने लिखा बांचना, परीक्षना, अनपरीक्षा, आमना और धर्मोपदेश लिखा ना, और अपने टोरे मजी ने लिखा पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, पूछना, चर्चा करना, वो लिखा ना मुख्यमंत्री कह सके कौन से पेज पे है ना, 257 पेज पे है ना, तो सब लिखा हुआ है क्लियर के क्या करना है ना, तो वो सब उपाय है। तो ये वास्तव में एक ये उपाय नहीं है, एकमात्र यही उपाय है, चाहे साधु संतों उनके लिए और चाहे गृहस्थों। साधु संतों को तो इसके अलावा कहीं भी कोई काम है तो आत्मा में जाने का है। ज्ञान और अध्ययन बोलते ध्यान और अध्ययन, ध्यान और ज्ञान, ज्ञानी ध्यानी तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, ज्ञान और ध्यान तपोरक्ता। तो ध्यान माने वो आत्मा में लीन होना, और ज्ञान माने स्वाध्याय, चिंतन, मन, धर्मोपदेश, शास्त्र लिखना, ये सब बात आ गई उनके लिए। तो तीसरा ये दूसरे नंबर पे है, क्यों उत्तम दिन तो अपने लिए तो ये पहले नंबर पे है, और पहले नंबर पे तो दूसरे नंबर पे क्या है कि दूसरा फूसरा कोई नंबर है ही नहीं, बस एक ही है, खत्म। एकमात्र रास्ता टोडरम जी के मोक्षनाथ प्रकाशक को पढ़ो तो एकमात्र रास्ता, और हमने अब जीवन पे देखना हो, जैसे अभी कहा था किसने के चरणान योग देखना हो, किसने कहा शाम को भी लड़का कौन बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था क्या राजकोट वाला क्या है हादसा चला गया क्या बोल रहा था ना कि गुरुदेव ने दिव्यान योग बोला उनको देख समझना हो दिव्यान योग तो उनकी वाणी सुनो, और चरणान योग जानना हो तो उनके जीवन को देखो। क्या देखना उनके जीवन में थे बोलो, लेटरिन जाते थे वो देखूं, सुबह घूमने जाते थे वो देखूं, क्या देखूं, भोजन करते थे वो देखूं। अरे वो निरंतर अपने उपयोग को जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाए रखते थे, समझ में ना, ये उनके जीवन का चरणान योग था। और अंत समय में तो उन्होंने समय सार के अलावा उनका उपयोग कहीं जाता नहीं था, रमता नहीं था। एक सही घटना है कि जब मैं नए चक्के लिख रहा था तो दिव्यार्थिक नय के 10 भेद लिख रहा था। तो उसमें एक दिव्यार्थिक नय है ना, अनवय दिव्यार्थिक नय का, तो मेरे चित्त में उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो रहा था। लिख भी दिया था सब तो किया था, लेकिन थोड़ी चित्त में शंका रहती थी कि जी अनवय दिव्यार्थिक का अर्थ क्या है। तो मैंने जाकर के गुरुदेव जी से अकेले में पूछा कि ये अनवय दिव्यार्थिक का अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है, मैंने ऐसा लिखा है पर मेरे को शंका है इसमें। लिख तो दिया है मैंने शास्त्र के हिसाब से, यहां वहां जितना भी अध्ययन करके, लेकिन मेरे चित्र को पूरा संतोष नहीं हुआ है इसलिए मैं। तो उन्होंने मेरे से इतना स्पष्ट शब्दों में कहा, भैया अब हम तो बस समय सार के अलावा कुछ पढ़ना नहीं चाहते, हमारी उम्र हो गई, हम अब इस समय में कुछ नया कुछ नहीं करना चाहते। ये शब्द उनके हैं। मैं ये कहता हूं कि अपना जीवन समय सारमय होना चाहिए। मैं तो अपने वो कौन सी सिद्ध पूजन की पंक्ति में लिखा ना, क्या बोलो, आत्म हो जावे समय सार, हाँ मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है यही राह जी। तो मेरे ये तब की बात है, कब की बात, कौन सी पूजा में है, ये सब मत बोलो, एक जने बोलो, श्री मंदिर पूजन में। हाँ तो ये समझ लीजिए कि श्री मंदिर पूजन को लिखे हुए मुझे आज 35 वर्ष हो गए। क्या तो एक ही सर्वोत्कृष्ट, और कल मुझे वो मनीष रहेली है ना लड़का बैठा ना जरा, इसने आकर मेरे घर में यहां से गया तो इसने आकर मुझे बताया, वो अभी मैं उससे बोलूंगा वो आपको बताएगा कि कहीं विश्व में कोई ऐसा निर्णय हुआ रिसर्च हुई, वो विशेष वो बताएगा कि किन चीजों को सबसे ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए, किन चीजों पर सबसे ज्यादा गहराई से मंथन होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए। तो विश्व में 10 चीजें निकाली, उसमें तीसरा नंबर समय सार का है। और जो दो नंबर पहले हैं उत्तम चंद जी, पहला और दूसरा, वो कोई फिलोसफी के शास्त्र नहीं है, वो तो कोई विज्ञान विज्ञान के हैं, यानी पहला नंबर है। बोल भैया कहेंगे तुम्हारा, तो बता इधर इसके स्पीकर दो, ले बोल, बता बता क्या है सच्ची बात। इसने मुझे को बोला वहां है स्पीकर, वहां से बोल देना, नहीं बताओ कि विश्व ने यह स्वीकार किया है, सारा जीवन उसमें लगाने लायक है, जितनी भी रिसर्च की जा सकती है की जानी चाहिए।